तत्व जिज्ञासु सज्जनों, श्रीमद् भगवद् गीता के आत्म संयम योग नामक छठे अध्याय के 37 से लेकर 45 श्लोक पर्यंत अर्जुन के द्वारा योग भ्रष्ट के विषय में जो किया गया प्रश्न और भगवान के द्वारा दिया गया जो उत्तर है उसका हम लोग विचार कर रहे हैं। तो जैसे कि बताया कि 37 से लेकर 39 इन तीन श्लोकों के माध्यम से अर्जुन ने योग भ्रष्ट की गति के विषय में प्रश्न किया है। 37वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान को कहा कि अयति अल्प प्रयत्न श्रद्धा से उपेत यानी युक्त योग से जिसका मन चलित है ऐसा जो योग भ्रष्ट है वो योग संसिद्धिम अप्राप्य यानी योग की संसिद्धि यानी फल तत्व ज्ञान अपुनरावृत्ति उसको प्राप्त न करके काम गतिम कृष्ण गच्छति कौन सी गति को प्राप्त करेगा, सुगति या दुर्गति। कर्म का परित्याग कर देने से दुर्गति का कारण भी विद्यमान है। शास्त्रोक्त मोक्ष साधन का अनुष्ठान और शास्त्र गर्हित कर्म से शून्य होने से सुगति का कारण भी विद्यमान है। इसलिए अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठा। 38वें श्लोक में अर्जुन ने संशय के बीज का विवरण किया है, कहा कि हे महाबाहो, कच्चित् ब्रह्मणः पथे विमूढः। ब्रह्मणः पथि यानी ब्रह्म की प्राप्ति का जो मार्ग है उसमें जो विमूढः यानी विचित्तः है, यानी कि अनुत्पन्न ब्रह्म ब्रह्म आत्म एक साक्षात्कार, जिसको ब्रह्म और आत्मा की एकता रूप साक्षात्कार नहीं हुआ है, और दूसरी तरफ वो अप्रतिष्ठ है। अप्रतिष्ठ यानी प्रतिष्ठा कहते हैं साधन को, अप्रतिष्ठ यानी साधन से रहित। देवयान पितृयान जो मार्ग है उस मार्ग में गमन के हेतु जो उपासना और कर्म है उन दोनों का उन्होंने परित्याग कर दिया है, दोनों से रहित है। उपासन सहित कर्म का इन्होंने परित्याग कर दिया है, और उधर ब्रह्मात्मिक के साक्षात्कार हुआ नहीं है। तो ये उभय विभ्रष्ट हुआ, यानी कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों से जो विभ्रष्ट ये जो साधक है उसका क्या होगा। भगवान उनका वो जैसे छिन्न अभ्रम नष्ट हो जाता है, छिन्न बादल जैसे नष्ट हो जाता है, क्या इस प्रकार इनका नाश होगा कि नहीं होगा। छिन्न अभ्रम जैसे वायु के द्वारा बड़े बादल से एक टुकड़ा अलग हो गया, वो जिससे अलग हुआ उससे वो टुकड़ा दूर चला गया और दूसरे मेघ को वो प्राप्त नहीं हो पाया। बीच में ही वायु के प्रभाव से, तीव्र वायु के प्रभाव से जैसे बादल बिखर जाता है, वैसे ही ये जो विषकलित जो अभ्रम है, बादल का जो अंश है, वो जैसे वृष्टि के अयोग्य हो जाता है, उससे वृष्टि नहीं होती है। और अंतराल में ही पूर्व मेघ और उत्तर मेघ के बीच में ही जैसे वो नष्ट हो जाता है, ठीक इसी प्रकार ये जो योग भ्रष्ट है वो भी कर्म मार्ग से विच्छिन्न है। पहले ही उन्होंने कर्म और उपासना का परित्याग कर दिया है। और इधर उत्तर जो उत्तर मेघ सदृश जो ज्ञान मार्ग है, वो ज्ञान मार्ग अप्राप्त है, उनको प्राप्त नहीं हुआ। तो अंतराल में ये है योग भ्रष्ट जो है बीच में, तो अब छिन्न अभ्रम की भांति नश्यति न वा, उनका नाश होगा कि नहीं होगा। अभ्रम जैसे बिना वृष्टि ही समाप्त हो गया, ऐसे ही ये जो योग भ्रष्ट है उसको कर्म फल मिलेगा या ज्ञान फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या कर्म फल और ज्ञान फल लब्धुम अयोग्य न वा? क्या इनको दोनों में से किसी का भी फल नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म और उपासना का त्याग कर दिया, इधर ज्ञान का फल प्राप्त नहीं हुआ है, क्या होगा उसका मतलब, उसकी गति क्या होगी, ये बताइए। तो जैसे अर्जुन ने ये संशय यहां खड़ा किया है, उसका अपाकरण करने के लिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अगले श्लोक में प्रार्थना करते हैं। एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता न ह्युपपद्यते। देखिए अर्जुन, जैसे अर्जुन ने प्रथम पूर्व दो श्लोक में जो संशय बताया, उस संशय का अपाकरण करने के लिए अर्जुन ने इसमें प्रार्थना की है, कहा कि एतद मे संशयम कृष्ण, एतद यानी भगवान, मैंने जो आपको बता दिया ये मैं संशय, मेरे को ये इस विषय में संशय है। हे कृष्ण, छेत्तुम अर्हसि अशेषतः, आप उसका जो है अशेषत यानी पूर्ण रूप से उसका छेदन करने में आप समर्थ है। अशेषतः, देखिए कहा कि अशेषत छेत्तुम अर्हसी, अशेषत यानी कुछ भी छोड़े बिना आप पूर्ण रूप से, ये जो मेरे मन में प्रश्न उठा है, जो संशय हुआ है, उसका छेदन करने में आप समर्थ है। अशेषत यानी संशय का जो मूल है अधर्मादि, उसका भी आप उच्छेदन करने में समर्थ है। भगवान श्री कृष्ण यदि अर्जुन को ये कहे कि हे अर्जुन, इस प्रकार का ये जो प्रश्न है तो तुम मेरे को क्यों पूछ रहे हो, इस प्रश्न का उत्तर तो मदन्य कश्चिद ऋषिर्वा देवो वा त्वदी इमं संशयम उच्छेद्यति, मेरे से भिन्न कोई ऋषि को जाकर के तुम पूछ लो, वो भी उत्तर दे देंगे तुम्हें, या कोई देव को जाकर के तुम ये प्रश्न पूछ लो, त्वदीय इमं तुम्हारे द्वारा ये जो किया गया है जो प्रश्न है संशय है उसको उच्छेद्यति, उसका उच्छेदन वो कर देंगे, मेरे को पूछने की क्या आवश्यकता है, ये इस संशय का अपाकरण तो कोई भी देव या ऋषि कर सकते हैं। तो अर्जुन क्या कहते हैं देखो, उत्तरार्ध में देखो, त्वदन्य संशयस्यास्य चेता न युपपद्यते, त्वद अन्य अस्य संशयस्य चेता ही न उपपद्यते। अर्जुन क्या कहते भगवान को कि भगवान त्वद अन्य आपसे भिन्न, अभी जैसे कहा कि कोई देव या ऋषि, त्वद अन्य आपसे भिन्न, त्वत से अभिप्राय भगवान आप परमेश्वर, आप परमेश्वर है और सर्वज्ञ है, सर्वशास्त्र कृत है और परम गुरु है और कारुणिक है, इतने विशेषण से आप युक्त है। परमेश्वर सबके अंदर आप विद्यमान है, सर्वत्र आप विद्यमान है और सर्वज्ञ भी है। भगवान को सर्वज्ञ कहा है, सभी उपनिषदों में ईश्वर को सर्वज्ञ कहा है। सर्वज्ञ का अर्थ होता है सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, जिसकी दृष्टि से कोई बात छुपी न हो उसको कहते हैं सर्वज्ञ। और ईश्वर से अतिरिक्त इस संसार में कोई सर्वज्ञ नहीं है। परमेश्वर सर्वज्ञ क्यों है, इसलिए वो सर्वज्ञ है कि वो घट घट के अंदर कण कण के अंदर वो विद्यमान है, इसलिए उससे कोई बात छिपी नहीं है। सर्वम जानाति और सर्व शब्द से पूरा संसार, पंचभौतिक संसार पूरा सर्व शब्द से ग्राह्य है। भला बताइए, कोई सोनार है, उन्होंने हार बनाया, वेड मीटी कटक कुंडल सब बनाया और उन्होंने अपने संदूक में रखा हुआ, कोई आते ही उनको दिखाता है कि देखो ये है, आप खरीदना चाहे तो इतना रुपया है इसका, लेने वाले को तो वो कहेगा कि सुवर्ण का है। और जैसे सरकार ने जो मानदंड स्थापित किया है तदनुसार ये बना हुआ है ये बता देगा, किंतु वस्तुसत उसमें उन्होंने कुछ मिलाया है कि नहीं मिलाया है वो खुद जो है जान सकता है सामने वाला व्यक्ति तो परीक्षा किए बिना जान नहीं सकता, उसको तो विश्वास ही करना पड़ेगा। अभिप्राय यह है कि कोई भी कोई वस्तु बनाते हैं तो उसमें क्या डाला हुआ है, कैसे बना है, उस सारी विधि का उनको ज्ञान। कुलाल है, वो घड़ा बनाता है तो घड़ा कैसे बनता है, मिट्टी कहां से वो लाया है, कितने दिन तक उनको वो जो है गला करके रखा है, और घड़ा कैसे बनता है, घड़े को बनाने में क्या क्या चीज चाहिए होती है, तो ये सारी बातें कुलाल को पता रहती है। और हम लोग जब घड़े को खरीदते हैं तो हम तो इतना ही जानते हैं कि इसमें पानी भरा जाता है और ठंडा पानी हम पी सकते हैं। कोई पूछे कि आपने ये जो घड़ा रखा है कैसे बना बताइए, तो बता सकते नहीं। और कुलाल को पूछो तो कहेगा कि मैंने इस प्रकार से बनाया, क्योंकि वो जानता है, उन्होंने चीज बनाई। तो अब भला बताओ ये संसार किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर से संसार उत्पन्न होता है, उसमें रहता है और लीन भी उसमें ही होता है। तो परमेश्वर को सारी बात का पता है, इसलिए वो सर्वज्ञ है। इसलिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं त्वद अन्य, भगवान आपसे भिन्न और कोई मेरे संशय का अपाकरण नहीं कर सकता है। आप परमेश्वर से अतिरिक्त कि परमेश्वर और अन्य से, आपसे अन्य और कोई क्यों नहीं इस संशय का अपकरण कर सकता? इसलिए कि आप परमेश्वर है, आपने संसार को बनाया है, सारी गति को बनाया है, सभी जीव को बनाया है। देखिए कर्म का फल पितृलोक, उपासना सहित कर्म का फल देवलोक, और धर्म का फल सुख, अधर्म का फल दुख, ये सारी व्यवस्था भगवान आपने की है। और इष्ट अनिष्ट और मिश्र जो तीन प्रकार का जो कर्म होता है, और इन तीनों प्रकार के कर्म का फल है देव, मनुष्य और तिर्यक, ये जो योनि है उसकी व्यवस्था भगवान आप करते हैं। इसलिए जब आप मेरे सामने हैं तो मैं आपको छोड़ करके और किससे पूछूं? और ये जो मेरा प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर आपसे अतिरिक्त तो और कौन दे सकता है? देव ऋषि, ऋषि की जहां तक बात है, ऋषि भी जो उत्तर देंगे वो शास्त्र के अनुसार देंगे। जैसे हम गुरु को कोई प्रश्न करते हैं तो गुरु जो उत्तर देंगे वो तो शास्त्र अनुसार उत्तर देंगे, किंतु ये जो शास्त्र है वो भी तो आपके द्वारा बने हुए हैं, आप शास्त्र कृत है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, आपने खुद भगवान ने कहा आगे 15वें अध्याय में जाकर के, सर्वे वेदे अहमेव वेद्य, सभी वेदों के द्वारा भगवान ने कहा कि मैं ही वेद्य हूं, जानने योग्य हूं। वेदांत कृत, वेदांत का कर्ता भी भगवान ने कहा कि मैं हूं। वेद विद एव च अहम, और वेद का संपूर्ण रूप से ज्ञाता भी मैं हूं, ऐसा कहा भगवान ने। इसलिए अर्जुन ने कहा कि भगवान आप शास्त्र कृत है, शास्त्र के आप कर्ता है। भगवान बादरायण जी ने ब्रह्मसूत्र के तृतीय सूत्र में कहा शास्त्र योनित्वात्, उसके दो वर्ण का आचार्यों ने बनाए शास्त्र की योनि और शास्त्र एव योनि। आप शास्त्र के कारण भी है और आप में शास्त्र कारण है, ये दो अर्थ की है। यानी परमेश्वर की सत्ता में शास्त्र ही कारण है। परमेश्वर की आप सत्ता को स्थापित करना चाहते हैं तो शास्त्र से अतिरिक्त तो और कोई प्रमाण नहीं है। और शास्त्र की योनि यानी शास्त्र के भी आप कर्ता, शास्त्र की उत्पत्ति भगवान आपसे हो, अस्य श्रुति भी है, निश्वसितम एतद् ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वांगी रसः। भगवान ये जो शास्त्र है वो आपसे श्वास की भांति उत्पन्न हुआ है। शास्त्र जो है भगवान से उत्पन्न होते हैं। किस प्रकार? जैसे श्वास, जैसे हम लोग जो है श्वास और उच्छ्वास क्रिया करते रहते हैं ना, तो श्वास लिया, जब पूरक करेंगे तब उसको श्वास कहते हैं, और रेचक करते हैं वायु को तब उसको उच्छ्वास कहते हैं। जब रेचक होता है, उच्छ्वास होता है, तब हमारे नासिका रंध्र से जो वायु का निर्गमन होता है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ये जो वायु का निर्गमन मेरे नासिका रंध्र से हुआ इसलिए उसको पैदा करने वाला मैं हूं? वो हुआ, पैदा करने वाला नहीं होते हुए भी नासिका रंध्र से वायु का निर्गमन हो रहा। ठीक इसी प्रकार सज्जनों, भगवान से ये जो है श्वास के समान शास्त्र उत्पन्न होते हैं, किंतु भगवान उसमें अन्यथा नहीं करते हैं। जैसे पूर्व कल्प में जैसे वेद का स्वरूप था वैसा का वैसा ही भगवान जो है वो इस कल्प में उसको उत्पन्न करते हैं। यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमह देव मात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर वै शरणमहं प्रपद्ये। का जिसने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, पौराणिक कथा हम लोग जानते हैं। भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोए हुए, शेष शैया पर सोए हुए उन्होंने संकल्प किया, अपनी नाभि कमल से एक कमल को उत्पन्न किया, और कमल के उत्पन्न चतुरानन ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्होंने चारों ओर देखा, उसके चार मुख थे जिसको चार वेद कहते हैं। यो वे वेदांश प्रहिणोति तस्मै, ब्रह्मा जी ने तप किया, तप यानी आलोड़न किया, और ये चारों वेद जो है ब्रह्मा जी के अंतकरण में उत्पन्न हो गए, प्रकट हो गए, और तदनुसार ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की। तो ये जो शास्त्र है उसके कर्ता भगवान आप है, इसलिए आपसे कौन सी बात इस संसार के अंदर छिपी हुई है? दूसरी बात ये भी है भगवान कि शिष्य के मन में यदि कोई संशय होता है तो वो गुरु से कहेगा और किससे कहेगा। गुरु का कर्तव्य हो जाता है कि संशय के शिष्य के संशय का अपाकरण करे। और मैंने आपको गुरु मान रखा, आप मेरे गुरु हैं। और अर्जुन ने शुरुआत में ही कहा, दूसरे अध्याय के शुरुआत में, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, मैं कोई आपसे ये शाला बहनोई संबंध से कोई बात नहीं कर रहा हूं, गुरु शिष्य के संबंध से मैं बात कर रहा हूं। और ये रहस्य है, और शास्त्र में कहा कि ये जो रहस्य होता है वो हर किसी को नहीं बताया जाता है, ना पुत्राय ना शिष्याय। जो शिष्य नहीं है, जो पुत्र नहीं है, उसको ये रहस्य नहीं बताया जाता। इसलिए भगवान मैं आपका शिष्य भी हूं, इसलिए जो है मैं योग्य हूं कि आप मेरे को इस प्रश्न का उत्तर दे। इसलिए परम गुरु है आप मेरे, परम गुरु जगत गुरु है। देखो भगवान श्री कृष्ण को क्या कहते, कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत के गुरु है। तो आप गुरु है और मैं आपका शिष्य हूं, और परम कारुणिक ही आप भगवान, आपसे अन्य और कौन इस संशय का अपाकरण कर सकता है। आपसे अतिरिक्त जो भी है वो तो सब अनिश्वर है, आपसे अतिरिक्त और जो भी है वो तो सब असर्वज्ञ है। वो इस प्रकार का प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकते हैं? बताओ आजकल आप अभी भी इस समय सोचे कि आज का विज्ञान प्रत्यक्ष दृष्ट प्रत्यक्ष रूप से न जाने कहां कहां उन्होंने यान भेजे हैं, मंगल के ऊपर क्या है वो देखने के लिए, चंद्र के ऊपर क्या है वो देखने के लिए, ब्रह्मांड का कहां 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 तक विस्तार है उसको पता लगाने के लिए जो प्रयत्न कर रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं जाना है। अरे वो बात जाने दो, मृत्यु हो गई उसके बाद जो गति है उसको शास्त्र से अतिरिक्त और कोई भी प्रमाण से नहीं जान सकते। चाहे साइंस कितना भी प्रयोग कर ले, किंतु इस संसार में जो जन्म धारण करते हैं उसकी मृत्यु निश्चित है, उसको तो वो मिटा नहीं सकते। जन्म निश्चित है उसको भी वो दबा नहीं सकते। और ये जन्म और मृत्यु, जन्म से पूर्व की अवस्था और मृत्यु के उत्तर की अवस्था को विज्ञान किसी भी प्रकार से नहीं जान सकता है। इसलिए अर्जुन कहते भगवान आपसे अन्य तो सब अनिश्वर और असर्वज्ञ है, चाहे वो ऋषि हो चाहे देव हो। वो जो है अस्य संशयस्य चेता न ही उपपद्यते, ये जो मेरा जो ये प्रश्न है उस प्रश्न का समाधान तो भगवान आप ही कर सकते हैं, कोई ऋषि या देव नहीं कर सकते। और मेरा ये जो प्रश्न है वो योग भ्रष्ट की परलोक की गति विषयक प्रश्न है। ये लोक विषयक प्रश्न होता तो और कोई भी दे सकता था, ऐहिक प्रश्न होता तो और भी कोई प्रश्न उत्तर दे सकता था प्रश्न, किंतु ये जो मेरा प्रश्न तो परलोक की परलोक गति विषयक है। इस शरीर छूटने के बाद उस योग भ्रष्ट की क्या गति होती है ये मेरा संशय है। इसलिए भगवान आप आपसे अतिरिक्त और उनका कोई छेदता यानी मेरे संशय को छेदन करने वाला कोई हो नहीं सकता। सम्यक प्रकार से उत्तर देने में एक आप ही समर्थ है, इसलिए भगवान आप ही प्रत्यक्षदर्शी है, परम गुरु है। इसलिए ये जो मेरा संशय है उसका आप समाधान कीजिए। अब जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा ये जो किया गया जो प्रश्न है, योगी के नाश की आशंका विषयक प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? योग भ्रष्ट के नाश विषयक। अर्जुन ने कहा कि नहीं, जैसे वो बादल बीच में ही नष्ट हो जाता है, पूर्व मेघ से अलग हो गया, उत्तर मेघ को प्राप्त नहीं हुआ, बीच में ही जैसे वो समाप्त हो गया, वैसे योग भ्रष्ट जो है वो ज्ञान मार्ग से भ्रष्ट हो गया, कर्म मार्ग को छोड़ दिया है, इसलिए ज्ञान मार्ग का भी फल नहीं मिलेगा, कर्म मार्ग का भी फल नहीं मिलेगा, तो मृत्यु के पश्चात वो बादल की जैसे हालत हुई नष्ट हो गया, वैसे ये नष्ट होता है कि नहीं, ये प्रश्न है उसका। अब भगवान उसका उत्तर दे रहे, देखो 39वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान वाच, भगवान बोले, भगवान ने वाच जो है भगवान ने उत्तर दिया था। ये जो है परोक्ष लीट का प्रयोग है, परोक्ष लीट, लीट लकार का यह रूप है। संस्कृत भाषा में 10 लकार होते हैं, ठीक है ना, उसमें ये लीट लकार का रूप है। वाच, वच 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 वाच। तो अब ये बात जैसे कि आपको प्रथम दिन ही बताया था कि संजय धृतराष्ट्र को कह रहे, और संजय ने धृतराष्ट्र को ये बात कही, उसको काफी समय बीत गया, उसके बाद सुत जी शौनकादि ऋषियों को ये बात कहते हैं, इसलिए सुत जी की दृष्टि से ये परोक्ष लीट का रूप होगा ही होगा, क्योंकि जो बहुत समय पहले जिसको किसने देखा नहीं, ऐसे जो भूतकाल के लिए ये लीट लकार का प्रयोग होता है। जैसे रामो राजा बबुआ, राम राजा हुए थे, तो इस संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि मैंने राम को राजा के रूप में देखा है? नहीं, बस रामायण आदि जो महाकाव्य है वही हमारे सामने प्रमाण है कि इस संसार में राम राजा हुए थे। इसलिए जो अनअद्यतन है, जो पहले हो गए, जैसे अभी भूतकाल ऐसा भी होता है जो जिसको हमने देखा है, हमारे जीवन अवस्था दरमियान जैसे आज से पूर्व में जो भी हुआ है, जिसको हमने देखा है, उसके लिए भी भूतकाल शब्द का प्रयोग होता है, उसके लिए लिट लकार का प्रयोग होता है, किंतु जिसको हमने देखा नहीं है ऐसे भूतकाल के लिए भी ये लिट लकार का प्रयोग होता है। इसलिए सुत जी ने संजय और धृतराष्ट्र का जो संवाद है वो उसके लिए जो है अदृष्ट है, बहुत पहले हुए, इसलिए ये लिट लकार का प्रयोग से भगवान ने कहा था। ऐसा भगवान ने क्या उत्तर दिया देखो, और एक बात यहां विशेष रूप से ये भी है कि इस भगवत गीता में खास करके चार पात्रों का प्रवेश है। एक तो धृतराष्ट्र, उन्होंने सबसे पहले प्रश्न किया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इत्यादि से प्रश्न किया और संजय ने उत्तर दिया। संजय ने जो उत्तर दिया वो भगवान और श्री कृष्ण का जो संवाद था वो बताया। इसलिए गीता में चार पात्र है, धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण। तो धृतराष्ट्र के लिए धृतराष्ट्र हुआ जैसा शब्द प्रयोग है, संजय के लिए भी संजय उवाच है, अर्जुन के लिए भी अर्जुन उवाच, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण उवाच नहीं है किंतु भगवान उवाच है। बताओ, भगवान भाष्यकार ने भी इस प्रश्न को उठा करके उत्तर दिया है भाष्य में, कैसा क्यों? तो भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी ने गीता भाष्य करते समय जब ये श्री भगवान वाच ये शब्द प्रयोग आया तब उन्होंने भी इस बात को ध्यान में रख के उत्तर दिया कि भगवान श्री कृष्ण के अंदर भगवत्ता है, भगवत्ता है। जो भग है वो भग से युक्त है, इसलिए उसके लिए भगवान शब्द का प्रयोग है। जैसे कोई व्यक्ति धन से युक्त हो तो उसको हम धनवान कहते हैं, कोई व्यक्ति ज्ञान से समृद्ध हो तो हम उसको विद्वान कहते हैं, वैसे भगवान श्री कृष्ण जो है वो भग से युक्त है। भग से, भग के वो स्वामी है, मालिक है, भग के ऊपर एकमात्र श्री कृष्ण की सत्ता चलती है, इसलिए श्री कृष्ण के लिए भगवान शब्द का प्रयोग है। अब ये भग क्या है उसको बताने के लिए भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी ने विष्णु पुराण के दो श्लोकों का उद्धरण दिया है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः वैराग्यस्यात मोक्षस्य षण्णाम भग इतिंगना उत्पत्तिं च विनाशं च भूतानामागतिं गतिं वेत्ति विद्याम अविद्याम च स वाच्यो भगवान इति। ये दो विष्णु पुराण के दो श्लोक है भगवान भाष्यकार ने गीता भाष्य में ये श्री भगवान वाच ये जो शब्द प्रयोग का भाष्य करते समय उसका उद्धरण दिया है। देखिए श्लोक का संक्षेप से आपको अर्थ बता देते हैं। प्रथम श्लोक है ईश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः वैराग्यस्यात मोक्षस्य षण्णाम भग इतिंगना। भग किसको कहते हैं, किसके लिए भग संज्ञा का प्रयोग होता है? तो कहा ऐश्वर्य के लिए, समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र श्री, वैराग्य और मोक्ष। संसार में ये जो छह चीज है उसको भग कहते हैं। भग ध्यान रहे, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, वैराग्य और मोक्ष, इसको भग कहते हैं। और इस पर जिसकी चलती है, जिसका शासन चलता है, उसको भगवान कहते हैं। देखो इस संसार के अंदर जो ऐश्वर्य है, शासन कर्तृत्व, ऐश्वर्य कहते हैं मालिकीपना, ईश, ईश का भाव है ऐश, ईश्वर का भाव है ऐश्वर्य। ईश्वर कहता है इस संसार के मालिक को, ईश इसने धातु से ईश्वर शब्द बनता है, ईशन करना यानी शासन करना, इस संसार के ऊपर नियंत्रण उसका चलता है, जीव का नहीं चलता। ये जीव की तो हालत ऐसी है जैसे हमारे यहां एक दृष्टांत है नहीं, जैसे कोई किचन अपनी बैलगाड़ी लेकर के जा रहा है, किसान बैलगाड़ी लेकर के जा रहा है और उस बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता भी साथ साथ चले और सामने से कोई कुत्ता यदि उनको दिख जाता है तो उससे साथ वो भूखता है कि देखना तुम मेरे सामने तुम मत आना, मेरे से लड़ाई नहीं करना, देखो मेरे अंदर कितनी ताकत है, ये इतना बड़ा जो है ये बैलगाड़ी है वो मैं खींच रहा हूं। अब बताओ वो कुत्ते को क्या पता है कि दो बड़े बड़े बैल जोड़े हुए हैं वो बैलगाड़ी को खींच रहे हैं, कुत्ते की क्या ताकत है, सामर्थ्य है। बस ऐसे ही सज्जनों इस समग्र संसार के ऊपर एकमात्र ईश्वर का शासन चलता है। यदि जीव का चलने लगे तो इस संसार न जाने कब का रसातल में पहुंच गया होता, किंतु भगवान ने वो सामर्थ्य अपने से अतिरिक्त और किसी को आज तक दिया नहीं है और आगे संभावना भी नहीं है, इसलिए संसार आज तक चलता रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा यावत चंद्र दिवाकर। तो भगवान जो है ऐश्वर्य के मालिक है, धर्म के, यश के, श्री, ये सब जो है भगवान के अधीन है, वैराग्य और मोक्ष। और भी एक श्लोक जैसे कहा है, उत्पत्तिं च विनाशं च भूतानां आगतिं गतिं, जो श्लोक इस प्रश्न के साथ लागू होता है। उत्पत्तिं और विनाश, भूतों की गति और आगति, विद्या और अविद्या को जो जानते हैं उसको भगवान कहते हैं। देखो इस संसार की उत्पत्ति कौन जानते हैं? हम लोग जानते हैं? नहीं, हम जानते हैं तो ये शास्त्र के माध्यम से जानते हैं, नहीं तो हमारे पास और क्या सबूत है। उत्पत्ति और विनाश, संसार का विनाश कब होना है, संसार की बात जाने दो, हमारा जन्म और मृत्यु ले लीजिए, उत्पत्ति से अपना जन्म और विनाश से अपनी मृत्यु, क्या हम लोग को पता? हमने अपनी इच्छा से जन्म धारण किया, जब चाहे तब कर सकते, जब चाहे तब मर सकते हैं, नहीं तो उत्पत्ति और विनाश को जो जानते हैं। इतना ही नहीं, भूतों की गति, गति यानी जाना, आगति यानी आना। देखिए कोई जन्म धारण कर रहा है वो कहां से आया और कहां जाएगा, वो कौन जानते हैं? भगवान जानते हैं। अर्जुन ने यही तो पूछा कि वो योग भ्रष्ट है, वो योग ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों से भ्रष्ट है, बीच में उसकी क्या गति होगी, वो नष्ट होगा कि नहीं होगा, ये कौन जानते हैं? ईश्वर ही जानते हैं गति और आगति। वेत्ति विद्याम अविद्याम च, जो विद्या और अविद्या को जो जानते हैं सज्जन उसको भगवान कहते हैं। इसलिए अर्जुन ने जो भगवान के लिए कहा कि भगवान आपसे अतिरिक्त देव या ऋषि कोई इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं, इसलिए भगवान आप ही मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो भगवान ने इस श्लोक में अर्जुन के लिए कहा कि पार्थ नैव इह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गति न गच्छति। भगवान ने ऐसा कहा अर्जुन के लिए, कहा कि हे पार्थ, पार्थ शब्द का संबोधन करके अर्जुन को सांत्वना दी कि तुम चिंता मत करो, तुम जो है पृथा के पुत्र हो। मैं तुमको उत्तर दे रहा हूं, नेव इह न अमुत्र तस्य विनाश विद्यते कहते हैं। तस्य यानी योग भ्रष्ट का विनाश, नेव इह यानी इह लोक में भी, नेव इह न अमुत्र, इह लोक में भी उसका विनाश नहीं होगा और परलोक में भी उसका विनाश नहीं होगा। तस्य विनाशः न विद्यते। इह और अमुत्र, नाश दो जगह हो सकता है व्यक्ति का, इह लोक में अपयश से नाश, इह लोक में अपयश के कारण नाश कहा जाता है और अमूत्र में दुर्गति के कारण नाश कहा जाता है। अमूत्र यानी परलोक, परलोक में तो नेव इह, भगवान कहते हैं इह लोक में भी उसका नाश यानी उसका अपयश नहीं होगा। कई बार जैसे अपयश होता है ना कि अरे ये तो योग से भ्रष्ट हो गया, अब उसका अपयश, लोग उसको जो हीन नजर से देखे, ऐसा नहीं है। इसका इस लोक में भी जो है शिष्ट के द्वारा वो ग्रहणीय नहीं है, क्योंकि उन्होंने वेद विहित जो संन्यास श्रवणादि साधन किए है, इसलिए वो निंद्य नहीं है। इस लोक में और परलोक में दोनों में भी उसका विनाश नहीं हो सकता है, भगवान ने ये कहा। अब आपको ये बताते, इहलोक में नाश किस प्रकार का? इहलोक में अपयश रूपी नाश, जैसे शिष्ट के द्वारा ग्रहणीय निंद्य, तो क्या शिष्टों के द्वारा निंदा इसमें प्राप्त थी? बिल्कुल थी, क्योंकि उन्होंने वेद विहित कर्म का तो त्याग कर दिया है, संन्यास से पहले वेद विहित कर्म का त्याग किया है। इसलिए कोई कह सकता है कि इन्होंने तो वेद विहित कर्म का त्याग कर दिया है, इसलिए निंदा के पात्र है। जैसे कोई उच्छृंखल व्यक्ति है, वो वेद विहित कर्म का त्याग करके मनमाने ढंग से जीवन जीता है, तो वो शिष्टों के द्वारा वो निंद्य हो जाता है, निंदा करने योग्य हो जाता है, लोग उसको अच्छा नहीं मानते। तो ये जो योग भ्रष्ट ने भी वेद वेद कर्म का त्याग कर दिया था, इसलिए इस लोक में भी शिष्टों के द्वारा जो है उसको निंदा की प्राप्ति हो रही थी। इसलिए भगवान ने कहा कि इस लोक में भी वो शिष्टों के द्वारा निंदा के पात्र नहीं है। और न अमूत्र, नैव अमूत्र, परलोक में भी वो जो है निंदा के या दुर्गति के योग्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने परलोक में जैसे अर्जुन ने कहा कि दुर्गति का कारण बताया कि वो इधर ज्ञान मार्ग से वो भ्रष्ट हो गया, इधर कर्म मार्ग छोड़ दिया, इसलिए परलोक की गति के लिए या तो ज्ञान चाहिए मुक्त होने के लिए, या परलोक में जाने के लिए कर्म या उपासना सहित कर्म चाहिए, इसमें ये कोई साधन नहीं है। इसलिए अमूत्र में भी नाश की शंका थी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उसका नाश नहीं हो सकता है, उसको वो तो कल्याणकारी था, इसलिए उसकी दुर्गति संभव नहीं है। इस विषय में विशेष विवेचन फिर करेंगे। ओम।